अस्सलाम वालेकुम, ये वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन है, प्रोग्राम है जहाँ रंग मैं हूँ असद हसन। आज के इस प्रोग्राम में जिन मौजूदात पे हम बात करेंगे उनमें सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर आला सतह की गिरफ्तारियां, अदालतों से जमानतों के मनसूख होने के बाद नैब की जानब से गुजशत रोज सदर आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार किया गया, तो आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के एक अहम रहनुमा हमजा शहबाज को गिरफ्तार कर लिया गया। एक गिरफ्तारी लंदन में भी हुई है, वो भी हमारे मौजूदात का हिस्सा है, दूसरा सेगमेंट उसके ऊपर बेस्ड है और आखिर में हम तफसील से बात करेंगे पाकिस्तान के बजट 2019-2020 के ऊपर, इसमें क्या प्लस हैं, क्या माइनसेस हैं, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, आम आदमी के नुक्ते नज़र से कैसा है, सियासी क्यादतें उसको कैसा देख रही हैं और इंडिपेंडेंट एनालिस्ट इसके बारे में क्या राय रखते हैं। सो चलते हैं प्रोग्राम के पहले हिस्से की जानिब। साबिक अदालत ने गुज़श्ता रोज़ आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार किया था, आज उनका 10 रोज़ा रिमांड जो है वो नैब ने हासिल कर लिया है और इसी तरह करप्शन के या बदनवानी के इल्ज़ामात के तहत नैब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा और इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज के सरबराह शहबाज शरीफ साहब के जो साहिबजादे हैं हमजा शहबाज बजाते खुद भी वो मेंबर कौमी असम्बली हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया है। और क्योंकि उनकी दरख्वास्तें जो हैं वो अदालत की जानब से मुस्तरद हो गई थी, जिसके बाद कौमी एहतसाब ब्यूरो ने उन्हें अहाता अदालत से ही गिरफ्तार कर लिया। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस जनाब मज़ाहिर अकबर नकवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने मंगल को अबूरी जमानत के लिए हमजा शहबाज की जो दायर दरख्वास्त थी उसकी समाअत की और दौरान समाअत हमजा शहबाज ने के वकला ने जमानत की दरख्वास्तें वापस ले ली, जिसके बाद लाहौर हाईकोर्ट ने दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी। सो ये आला सदा की गिरफ्तारियां हो रही हैं, इसके बारे में कई एक तरह की क्या सराइयां हैं। सियासी जो क्यादत है बिलखसूस मुस्लिम लीग नवाज हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो ये कहते हैं कि ये सियासी इंतकाम है। हुकूमत के तर्जमानों की बात अगर सुने तो वो ये समझते हैं कि हुकूमत का इसमें लेना देना कुछ नहीं, पुराने मुकदमात हैं और इंडिपेंडेंट इदारा है नैब और ये उसकी कार्रवाई का नतीजा है। एक्चुअल सिचुएशन क्या है और फिर ये कि इस तरह की गिरफ्तारियां बहरहाल सियासी मंजरनामे के ऊपर क्या इम्पैक्ट पैदा कर रही हैं, हुकूमत खासतौर पर जब बजट पेश कर रही थी तो ऐसी गिरफ्तारियों से वो मजबूत हुई है या कमज़ोर हो सकती है, तजिया लेंगे। हमारे साथ हैं जाहिद किशकोरी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं और पोलिटिकल कमेंटेटर हैं। हमें सेनेटर सैयद जफर अली शाह साहब ज्वाइन करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी कोशिश करते हैं कि हमें वहाँ से लीडरशिप में से कोई नुमाइंदा ज्वाइन करें। इम्तियाज़ आलम साहब हमारे साथ होंगे, सीनियर सहाफ़ी हैं और तजियाकार हैं। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। जाहिद किशकोरी साहब, सबसे पहले आप अपडेट कीजिएगा कि ये गिरफ्तारियाँ जिस मौके के ऊपर हो रही हैं, पाकिस्तान के अंदर बजट है और एक मखसूस हालात के अंदर बजट आ रहा है, सो इसके ताने बाने क्या हुकूमत से मिलाए जाएं या ये महज इत्तेफाक है कि इस वक्त ये गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं। जाहिद गिशकोरी साहब की जो है वो लाइन ड्रॉप हुई है। जफर अली शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आप ये बताइएगा, अपोजिशन का कहना ये है कि ये सियासी इंतकाम है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसमें कोई अमल दखल है इन गिरफ्तारियों में?
मैं आज करूं कि अपोजिशन हमेशा, कोई भी अपोजिशन हो, जब भी कभी किसी गवर्नमेंट की भी अपोजिशन हो तो उसके खिलाफ अगर कोई जायज और कानूनी और विद इन दी फ्रेमवर्क ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन अगर भी कोई काम किया जाए तो उसके पास सबसे पहला डिफेंस यही होता है कि ये इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। पहली बात तो ये है कि जैसे अभी आपने खुद अपने इब्तदाइयों में भी ये कहा है कि ये आप जिन केसेज में पकड़े जा रहे हैं और जिन जो इन पर केसेस बने हैं और जो अब ये रेफरेंस का चिंता अब ये सामना करेंगे, नॉट इवन ए सिंगल केस जो है वो पीटीआई की तरफ से या इमरान खान की तरफ से कोई रजिस्टर्ड नहीं हुआ, ये रिकॉर्डेड बात है। ये तमाम उस वक्त के केसेस हैं, तमाम उस वक्त की इंक्वायरीज हैं जो कि अब राइट अप हो के इन्वेस्टिगेशन की शक्ल इख्तियार कर गई है और इन्वेस्टिगेशन में भी जनाब के नजर से भी गुजरा होगा कि इन्होंने जिस जिस अंदाज से और जिस जिस अंदाज से इन्होंने क्वेश्चन की है वो पाकिस्तान के लोग कम अज कम कानों को हाथ लगा रहे हैं और न सिर्फ कानों को हाथ लगा रहे हैं, आज जिस महंगाई का सामना पाकिस्तान की कौम कर रही है, आज एक बिल्कुल ऐसे सजा है पाकिस्तान की। अभी आप बजट की बात कर रहे थे, ये तमाम ये बजट भी, महंगाई भी, बेरोजगारी भी, इसको तमाम उस सबका करप्शन ने जो है वो इफेक्ट किया है और सबका करप्शन जो है वो उसकी वो बड़ी चैंपियन जमातें जो है अपने आप को डेमोक्रेट भी और बड़ी तरक्की याफ्ता भी कहती थी ये तमाम कार्रवाई जो है उनकी है।
ठीक, लेकिन शाह साहब एक एक उनके पास एक आर्ग्यूमेंट है और वो बड़ा स्ट्रांग है, एक उनका आर्ग्यूमेंट है और वो स्ट्रांग है। जनरल मुशर्रफ के दौर में अकाउंटेबिलिटी हुई और मियां नवाज शरीफ ने 11 साल जो है वो, और फिर 11 साल में जनरल मुशर्रफ का एरा भी शामिल होता है जब जरदारी साहब की भी अकाउंटेबिलिटी होती रही, लेकिन साबित नहीं कर पाया। प्रोसिक्यूशन वीक होती है, रियासत के इदारे या इन्वेस्टिगेटिव इदारे जो हैं वो सबूत इकट्ठे नहीं कर पाते हैं, तो अल्टीमेटली ये पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन ही फिर करार पाती है। आपकी बार ये कैसे समझ लिया जाए कि वो मुख्तलिफ है? और दूसरा, हुकूमत का नाम इसलिए भी आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने बजाते खुद एक दो इंटरव्यूज में और मीडिया इंटरेक्शन में नाराजगी का इजहार किया है नैब के साथ कि मुझे समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह से परफॉर्म कर रही हैं और चोर क्यों बाहर फिर रहे हैं उनके लफ्जों के मुताबिक। सो इसलिए ये लिंक किया जाता है उनको कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी ना किसी सतह पे कोई असर अंदाज होने की कोशिश तो नहीं की गई?
नहीं सर, मैं जरूर आप थोड़ा जरा बारीकी से जरा देखें कि वो जिसका जिक्र आपने मियां नवाज शरीफ साहब और जनाब जरदारी साहब के बारे में किया है पिछले दौर में कि वो उनके खिलाफ मुकदमे हुए, वो बाहर हुए और जनरल मुशर्रफ का वो दैट वॉज विक्टिमाइजेशन, वो 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 कोई एहतसाब नहीं था, वो जो है वो विक्टिमाइजेशन थी, वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी, क्योंकि जनरल मुशर्रफ खुद एक बहुत गैर कानूनी और गैर अमीर स्टेप लेकर उसने ताकत पर कब्जा किया था और इकतदार पर कब्जा किया था, इसलिए उसने अपने इकतदार को बचाने के लिए, इकतदार को दवाम बख्शने के लिए उसने जरूर विक्टिमाइजेशन की है कि एक लीडर को पाकिस्तान से उठाकर सऊदी अरब में फेंक दिया और इसी तरह दूसरे तमीज मुकदमात जो है वो बना दिए, वो तो विक्टिमाइजेशन हो सकती है, लेकिन ये विक्टिमाइजेशन आप इसको आप नहीं कह सकते कि ये थे इनके अपने अदवार में। पहली बात तो यह है कि नैब के जो चेयरमैन है या नैब का जो ढांचा है ये 1999 में बना था, बल्कि जो मैंने खुद टेबल किया था असेंबली में, तो ये जो है ये कानून बना हुआ ही और ये जो अदारा है नैब नेशनल अकाउंटेबिलिटी का, इसके चेयरमैन जो है वो लगे ही मियां नवाज शरीफ साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मर्जी से।
नहीं, वो ये तस्लीम करते हैं कि वहाँ पे एक नैब आर्डिनेंस में या नैब कवानीन में तब्दीलियां नहीं कर सके, इस पे वो दोनों पार्टियां जो हैं वो अपना मौका बयान करती हैं। इससे पहले कि मैं इम्तियाज आलम साहब के पास जाऊँ, जफर शाह साहब एक और बात हमें ये बता दें, एक और भी बड़ा जानदार एतराज है, वो ये कहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस अगर इतना इंडिपेंडेंट है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो टेंटेड हैं या जिनके ऊपर बज़ाहिर बड़े स्ट्रांग एलिगेशन हैं उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हो पा रही है, जिसमें साबे इस वक्त मौजूदा वजीर दिफा भी हो सकते हैं, जिसमें कराची से ताल्लुक रखने वाले फैसल वावडा भी हो सकते हैं, जिसके बारे में सोशल मीडिया और अपोजिशन लीडर्स ये बता रहे हैं कि उन्होंने भी उसी तरह बाहर से बेनामी जायदादें खरीदी हैं। सो उनके खिलाफ नैब मुतहरिक क्यों नहीं है और कम अज कम उसी रफ्तार से मुतहरिक क्यों नहीं है जैसे पीपल्स पार्टी उनके खिलाफ?
बड़ा मकबूल सवाल है और आपकी आप यकीन जाने जहां तक मेरा इलम और नॉलेज है, ये लोग जिनका आपने जिक्र किया है कोई भी इनमें से कदम को कितना बड़ा है और कितना छोटा है पीटीआई में, वो इस म्यूजिक को वो भी फेस करेगा और आप देखेंगे आप देखेंगे कि ये इनके साथ भी नैब आर्डिनेंस जो है या नैब का कानून जो है वो इक्वली जो है उसकी भी उसके जरिए भी
सही। आप ये कॉन्फिडेंट है कि ये वहां पे होगा?
अपनी अपनी करप्शन का जवाब देंगे
जी। हमारे साथ ठीक है इम्तियाज आलम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपके ख्याल में ये अकाउंटेबिलिटी है फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट या ये पॉलिटिकल प्रेशर है, विक्टिमाइजेशन का लफ्ज अगर सख्त भी होता है, क्या है आपके ख्याल में जो इस वक्त ऑन गोइंग प्रोसेस है? इम्तियाज आलम साहब जी,
ये देखिए कि हमारे मुल्क में ये अकाउंटेबिलिटी कभी संजीदा हुई नहीं है और तारीखी तौर पर ये इस्तेमाल हुई है सियासतदानों के खिलाफ, सियासी मुखालफिन के खिलाफ और खास तौर पर फौजी हुक्मरान के खिलाफ, और वो जब हुक्मरान बेच रहे हैं तब भी सियासतदानों को दिल्ली करवाया गया है बहुत से में खिलाफ, कुछ जायज तौर पर जायज शिकायत भी थी या जायज एतराज थे या उनके बारे में शकूक थे या इल्जाम थे, लेकिन बिलमूम इसे इस्तेमाल किया गया पोलिटिकल इस्तेमाल। तहरीक इंसाफ ने तो इसे ऐसे बना दिया कि सारे मिसाइल का हल अगर ये 2-4-5-10-20 लोग पकड़ लिए जाए निकलवा लेंगे और हम बिल्कुल चलाएंगे, वो 200 अरब डॉलर भी कहीं पड़े थे जो लेकर आने थे, ये सब अफसाना बातें साबित होंगी। और अभी जो जरदारी पार को पकड़ा है उसमें अब तक जो पड़ा है उसमें 1.5 करोड़ रुपए की ट्रांजेक्शन, और जो कुल जितने कर रहे हैं सबको मिला भी लिया जाए तो जीडीपी का नहीं बनता। बाकी जो खराब रुका है वो कहाँ चले गए, वो कहा गया कि जी तो सब कहाँ चले गए, गायब हो गए, इस तरह की बातों पर सेल किया है लोगों को। अब जरा क्या हमारे यहाँ कभी फौज के जनरलों की अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई, जनरल की अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई, जनरल खुद पुख्ता रहे, उनका अपना सिस्टम है, सुप्रीम डिविजन काउंसिल कहते हैं कि उनका अपना सिस्टम है और दावा करते हैं कि वो बड़ा मौसर है और वो बड़े करप्शन वगैरह नहीं करने दे सकते, लेकिन अगर हुई भी है तो पूरा गवर्नेंस पाकिस्तान में पूरा जो इसे कहते हैं रेंट सीकिंग का निजाम, यानी किरायेदारी निजाम, थानेदार है वो कहता है मेरा थाना है, एक अस्पताल का एमएस है वो कहता है ये मेरा अस्पताल है, वो सबको अपनी जाती प्रॉपर्टी या फीसडम के तौर पे जागीर के तौर पे इसे इस्तेमाल करते हैं। पहले आप FBR को ले लें, आप पुलिस डिपार्टमेंट को ले लें, आप लोअर कोर्ट्स को ले लें, आप जिस एडमे को आप उठाएंगे आपको नजर आएगा पूरे सिस्टम में करप्शन है।
ठीक है, सो ये तो इम्तियाज साहब ये पिछले 12 साल जो हैं वो कम से कम काफी नहीं थे कि कम से कम जो जमहूरी ताकतें हैं जिनका दावा है ट्रांसपेरेंसी शफाफियत इदारों का मजबूत होना कि वो इनको मजबूत कर लेते, पिछले 12 साल काफी नहीं थे इसके लिए, 10 साल उनके पास थे, अब 1 साल इनका हो चुका है, ऑलमोस्ट 12वें साल में बात जाने लगी है।
देखिए ये जो ना पिछले संजीदा थे ना ये संजीदा है, इन्होंने इसे पॉलिटिकल स्टंट बनाया है, ये अखलाकी तौर पर इसलिए सुपीरियर है, हालांकि इनमें भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं शामिल जो हर उस निजाम की जद में आते हैं जिसमें पीपल्स पार्टी के लोग या मुस्लिम लीग एन के लोग जिन निजाम की और जिस तरह के हेरा फेरी की जद में वो आ रहे हैं, इसी तरह के इनके पास भी वो सब लोग बैठे हैं, इनकी कैबिना में बैठे हुए हैं, तो ये सब देखिए ये इसे सियासी स्टंट बना दिया गया है। पूरे निजाम की इस्लाह की जरूरत थी और जरूरत है। अब आप जब इसे बनाएंगे, अब अगर आप अक्रॉस बोर्ड नहीं करेंगे, सबका हिसाब नहीं होगा, भले वो अपोजिशन पार्टी है या अपोजिशन की है, भले कोई एक इदारा है कोई दो इदारा है,
क्रेडिबिलिटी नहीं बनेगी। जाहिद किशोरी साहब बड़ा क्लोजली इसको सर फॉलो कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हैं, जियो और जंग के साथ और न्यूज के साथ वाबस्तगी है। जाहिद बहुत शुक्रिया आपका भी, हम तो शुरू में ही अपडेट आपसे लेना चाह रहे थे कि फिर एनालिसिस हो, लेकिन आपकी लाइन जो है वो मुनकता हो गई। ये बताइएगा कि नैब इस बार जो लीडरशिप है, ऑफकोर्स अब ये तो टॉप ब्रास लीडरशिप है जो जिसको अरेस्ट कर लिया गया है, उसके पास शवाहद हैं अदालतों में, ये शवाहद और ये मुकदमा ठहर पाएंगे या इनका भी अंजाम पहले जैसा होगा? और दूसरा यह कि ये नैब की जो क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवालात हैं, बजाते खुद नैब चेयरमैन की जो हालिया मुबैना लीक वीडियोज हैं उसके पस मंजर में, सो इस क्रेडिबिलिटी के साथ नैब कैसे आगे बढ़ पाएगा?
थैंक यू असद, बिल्कुल आप बात सही कह रहे हैं। देखिए इस वक्त पाकिस्तान में कुल मिला के कोई 6,000 के करीब मुख्तलिफ केसेज हैं, 1256 के करीब रेफरेंसेज हैं, और अगर जिसमें कौमी खजाने को नुकसान हुआ हो करप्शन करके वो तकरीबन 1300 अरब रुपए है, तो नैब इसको 2000 से 2019 यानी कि 18 साल का अरसा गुजर गया है, उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। और जितने अब तमाम जो अपोजिशन की लीडरशिप है वो ऑलमोस्ट जेलों में है। आप अगर पहला इसी केस को ले लेते हैं, आसिफ जरदारी के केस को देखें, अभी ये केस इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में है और उन्होंने तो बेल प्री बेल वो अप्लाई किया हुआ था प्री अरेस्ट के लिए, यानी कि उसको किसी अदालत की तरफ से ऑर्डर नहीं है कि उसको गिरफ्तार कर लिया जाए, ये नैब की अपनी सवाबदीद है, अंडर इन्वेस्टिगेशन वो थे और नैब ने उसको गिरफ्तार कर लिया, जबकि नवाज शरीफ के केस में अंडर इन्वेस्टिगेशन नवाज शरीफ थे लेकिन उसको गिरफ्तार नहीं किया गया था, वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से फैसला आ गया था, उसको सजा हो गई थी तो उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया। तो ये नैब की अपनी सवाबदीद है, यही तो एक इशू है। मैंने जो इन दोनों केसेस को फॉलो किया है, चाहे वो पैनामा केस हो जिसमें अदालतों में इतना रिकॉर्ड पेश किया गया, पहले उनको छोटी अदालतों ने कन्विक्ट कर दिया, फिर आगे जाके नैब के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है कि बड़ी अदालतों में वो कन्विक्शन बरकरार रह पाएगी। मुझे तो ये अमल बहुत मुश्किल लगता है, और यही केस आसिफ जरदारी का है। अगर छोटी अदालतों से उनका कन्विक्शन हो भी जाता है तो आगे जाके ये केस कितना स्टैंड कर पाएगा? नैब की कैपेसिटी का प्रॉब्लम है, फिर एविडेंसेस कलेक्ट करना, फिर कैपेबिलिटी भी है। तो ये आगे जाके मुझे नहीं लगता लॉन्गर टर्म में ये दोनों केसेस सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के लेवल तक ये सजाएं बरकरार रहेंगी। और फिर साथ इन लोगों को अगर ये बात बिल्कुल सही है, ये वो पहले के केसेस हैं जो अभी तक चल रहे हैं, और ये अकाउंटेबिलिटी यूनिक है इस दफा पाकिस्तान में। ये नहीं है कि जो मुशर्रफ के दौर में थी कुछ लोगों की हो जाती थी, थोड़े अरसे के लिए फिर छोड़ दिया जाता था। मेरा नहीं ख्याल अब सोशल मीडिया या नई हुकूमत जो आई है वो इन चीज़ों को जो मुस्तकिल मिजाजी के साथ ना सिर्फ फॉलो कर रही है, बल्कि ये बात सही है कि जो हुकूमत में लोग बैठे हुए हैं इस वक्त 16 कैबिनेट मेंबर्स हैं, चाहे वो सूबे में हों केपीके में या फिर वफाक में, उनको भी मुख्तलिफ केसेस का सामना है, इन्वेस्टिगेशन में है या इंक्वायरी स्टेज पे हैं। उनको अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई सिवाय अली खान के। तो ये इसलिए सवाल उठता है नैब की
अकाउंटेबिलिटी के ऊपर
हो या थोड़ी सी ढील हो। बाकी नैब के चेयरमैन का जो आपने कहा, मेरी नजर में वो ये बात भी सही है कि वो कंट्रोवर्शियल हुए हैं इस बात पे कि जो वीडियो सामने आई है एक ऐसा मुल्जिम जिस पर रेफरेंस फाइल हो चुका हुआ है और वो जमानत पे है, उसके बाद नैब चेयरमैन के साथ उसकी वीडियो आती है और अपोजिशन या दूसरे लोगों ने शोर इस पे नहीं मचाया, शायद खौफ की
वजह से। लेकिन अदरवाइज वो इसलिए कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं कि जो मुतसिब किसी भी दर्ज की फेवर के अगेंस्ट किसी भी दर्ज की फेवर देते हुए बजाय नजर आए, सो इसका मतलब ये कि वो इन्फ्लुएंस हो सकते हैं बहुत सारी चीजों से। सो ऑफकोर्स जो है वो
असल ये एक मसला है हुकूमत के लिए भी, हुकूमत क्या करे क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त टेस्टिंग टाइम से गुजर रहा है। अगर नैब की नई चीजें सामने आती हैं, मिसाल दे दें कि नैब के चेयरमैन अगर रिजाइन कर देते हैं या सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में उसका केस भेजा जाता है, वहां से वो फारिग हो जाते हैं, तो जिस जो मौजूदा सूरत हाल है फिर तो अकाउंटेबिलिटी चलेगी नहीं जब तक के नया चेयरमैन नहीं बनेगा। और मुझे नहीं लगता कि मौजूदा सूरत हाल में अपोजिशन लीडर के दरमियान और वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान कोई कॉन्सेंसस डेवलप हो पाएगा और नया चेयरमैन जल्दी से आ जाएगा। और नैब कानून के मुताबिक चेयरमैन नैब के बगैर अकाउंटेबिलिटी का कोई भी अमली प्रोसेस आगे नहीं बढ़ सकता, जो भी केस हो रेफरेंस की शक्ल में हो।
मैं आज जफर अली शाह साहब जी शाह साहब ये बताइएगा कि अब जाहिर नैब जो है वो उसको प्रोसीड करेगा, बात अदालतों में जाएगी, लेट्स अज्यूम कि नैब के पास ऐसे शवायद हैं कि जिसके ऊपर सजाएं हो जाती हैं पॉलिटिकल इलीट को, तो उसके बाद क्या है, सजाओं के बाद वही रिकवरीज हैं या बड़े ऑफर्स के अगेंस्ट जो है वो डील है जिसको NROB आप कह लें, क्या है ऑप्शंस क्या हैं गवर्नमेंट के सामने?
देखिए जी, गवर्नमेंट के सामने ऑप्शंस जो और गवर्नमेंट जब बात करते हैं तो मेरे सामने इमरान खान और पाकिस्तान की आवाम के सामने इमरान खान है और उसकी कमिटमेंट है, उसका एजेंडा है, उसका उसने जो प्रमिस किया है कौम से कि मैंने ये करप्शन वाले जो लोग हैं न सिर्फ ये कि इनको मतलब है कि मैंने कटहरे में लाना है बल्कि मैंने रिकवरी भी करनी है, क्योंकि अरबों के हिसाब से आज जितना मुल्क हमारा मकरूज हो चुका है, देख रहे जी ये बात सोचने की है, बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि वो कर्जे किधर गए, वो जो ये जो 30-35-34 साल हुकूमत करते रहे दोनों खानदान और खाते पीते खानदान है, कोई भूखे भी नहीं है, कोई गरीब भी नहीं है, कि वो किधर गया, कि आज हमारा मुल्क जो है इसमें बेरोजगारी भी है और लोगों के पास आटा खरीदने की ताकत खत्म हो गई है। तो ये जो है ये मसला ये आगे जाएगा, लोगों को अब एक ही तसल्ली है, एक ही होप है कि ये मौजूदा हुकूमत जो है न सिर्फ जो करप्ट लोग हैं ये उनका मसला करेगी बल्कि इनसे रिकवरी भी की जाएगी।
सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है के बगैर तो जी। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा हैं। मुशाहिदुल्लाह साहब बहुत शुक्रिया आपका। आप बताइएगा ये जो हालिया गिरफ्तारियां हैं आला सतह की हैं, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के वाइस प्रेसिडेंट हैं हमजा शहबाज और उनको आज गिरफ्तार किया गया है, सो ये جو مقدمات ہیں اس کی بنیاد کے اوپر جو بظاہر رپورٹ ہو رہا ہے میڈیا کے اندر کہ یہ یہ شواہد ہیں, یہ اس بنیاد کے اوپر ہے یا پولیٹیکل انفلوئنس ہے یا پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, یا آپ کی جماعت خاص طور پہ کیوں سمجھتی ہے کہ پرائم منسٹر براہ راست اس کے اندر انوالو ہیں ان گرفتاریوں میں اور وہ پولیٹیکلی وکٹمائز کر رہے ہیں؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, دیکھیں میں اگر یہ کہوں گا کہ یہ وکٹمائزیشن کر رہے ہیں تو وہ کچھ لوگ میری بات مانیں گے کچھ نہیں مانیں گے, لیکن بات یہ ہے کہ جو یہ سارے کام کر رہا ہے وہ تو چیئرمین نیب کر رہا ہے نا, اس نے جو جاوید چودھری کو انٹرویو دیا ہے اور اس سے اگلے دن انٹرویو اس نے اپنی پریس کانفرنس کی ہے, اس کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ جی میں صرف اپوزیشن کے خلاف یعنی کہ یہ ساری کاروائیاں کر رہا ہوں, حکومت کے خلاف اس لیے نہیں کر سکتا کہ دس دن میں حکومت گر جائے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکومت میں ایک بڑے وسیع پیمانے پہ جس کو ساری دنیا جانتی ہے, جو عمران خان خود بھی مطلب بہت سارے الٹے سیدھے کاموں میں انوالو ہے, کہ کوئی یعنی کہ نہ آمدنی ہے نہ کچھ ہے اور وہ رہتا ہے بادشاہوں کی طرح ہے مطلب کہ, اور اتنا سہل انداز میں پیش کر دیتے ہیں کہ جی کمنٹری کی تھی 25 سال پہلے یار, اس زمانے میں 30-40 ہزار روپئے ملتے تھے 25,000, تو بہرحال وہ ساری دنیا کو پتا ہے اور ان کی بہن کے پاس ہی جس طرح سے دو بہنوں کے پاس 107 ارب روپئے نکلے وہ عمران خان ہی کے پیسے ہیں, پھر ان کے دائیں بائیں جتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں, پھر ریفرنسز ہیں, کیسز ہیں ان کے خلاف, مطلب خطر صاحب جو ہیں ان کے جو ایکس چیف منسٹر ہیں ان کے خلاف کیسز ہیں, ابھی آپ دیکھ لیں بی آر ٹی کے کیسز موجود ہیں, اس پہ انکوائری ہو رہی ہے, بلینٹری پہ انکوائری ہو رہی ہے, مالم جبا پہ انکوائری ہو رہی ہے, وہ محمود خان بھی انکوائری ہو رہی ہے, ایون پرائم منسٹر کے خلاف جو یہ کٹ پتلی ہے اس کے خلاف بھی کیسز ہیں, تو وہ ظاہر ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے.
لیکن آپ کی بات میں تو پھر یہ جواب آ جاتا ہے نا, اگر انکوائری ہو رہی ہے اس کے ان کے خلاف بھی, ان کے لیڈرز کے خلاف, بلکہ اہم عہدوں پہ بیٹھے لوگوں کے خلاف, تو اس کا مطلب ہے کہ بڑی ٹرانسپیرنسی سے بات آگے بڑھ رہی ہے.
یہ عجیب و غریب ٹرانسپیرنسی ہے کہ ایک بندے کے خلاف انکوائری ہے وہ جیل میں ہے, دوسرا وزیر اعظم ہے, یہ اچھی ٹرانسپیرنسی جو ہے.
نہیں 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 میں آپ کی بات سے میں کاؤنٹر کوسچن کیا نا کہ آپ نے خود کہا کہ ان کے خلاف انکوائریاں ہو رہی ہیں.
میں تو گزارش کر رہا ہوں نا بھائی, میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ اکاؤنٹیبلٹی تو اکراس دی بورڈ ہوتی ہے نا,
بالکل اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں, ہم نے جو کوسچننگ ان سے کی ہے وہ بھی
انکوائری ہوتی ہے, ایک انویسٹیگیشن ہوتی ہے, ایک اس کے بعد ریفرنس ہوتا ہے. مسلم لیگ نون کا آدمی اور صدر وہ تو انکوائری پہ جیل میں چلا جاتا ہے, اور ان کے خلاف ریفرنسز ہو چکے ہیں. کیا بابا روان پہ نہیں یہ مال ہے, اس کا نندی پور کا ریفرنس دائر ہے نا, اسے پکڑا کسی نے؟ اور اس کے علاوہ این آئی سی ایل کے جو سارے مجرم ہیں وہ ان کی پارٹی میں,
ٹھیک ہے,
اس کے علاوہ وہ جو اولڈ ایج بینیفٹ اسکیم ہے اس کے مجرم سارے ان کی پارٹی میں,
آپ نے
ایک آدمی کی 34 آف شور کمپنیاں ہیں, تو اعتراض بھی بورڈ تو نہیں ہو رہا نا. اور پھر میں نہیں کہہ رہا میرے بھائی, یہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے آپ کا جو
چیئرمین
یار مناتے ہیں سر سے پاؤں تک, وہ چوم چوم کے ہمیں تو تکلیف دے رہے ہیں اور ان کو جناب یار مناتے ہیں.
دیکھیں آپ نے جو سوال اٹھایا نا, اور آپ نے یہ بھی کہا کہ غیر جانب, ہم نے یہی سارے کریٹیکل کوسچنز اس وقت تحریک انصاف کے رہنمائیں اور آپ کے فارمر دوست ہیں ان سے ہم نے یہ سوال اسی انداز میں کیے ہیں, تو وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم کسی اور جانب کھڑے. ایک اور بات یہ پوچھنا چاہوں گا مشاہد اللہ صاحب, آپ نے اس میں یہ تو ضرور گنوایا ہے کہ کون کون سے لوگ ٹینٹڈ ہیں یا بظاہر ٹینٹڈ ہیں یا مبینہ طور پہ انوالو ہیں کرپشن میں اور ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے, لیکن یہ المیہ نہیں ہے کہ آپ کی جماعت ہو یا پیپلز پارٹی ہو وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم انوسنٹ ہیں, یہ لیں پروف, وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف کیوں نہیں ہو رہا.
میں تو انوسنٹ کی بات میرے کہنے سے نہیں ہوگی نا, وہ تو فورم بتائے گا نا, فورم نے تو بتا دیا نواز شریف کا, تو انہوں نے خود ہائی کورٹ میں کھڑے ہو کے بار بار پوچھا, جیسے اس میں حدیبیہ میں کہ بھائی میں نے کوئی کرپشن لی, میں نے کوئی کیک بیک لیا, اس نے کہا نہیں لیا, پھر فیصلے میں لکھا. پھر یہ ہے کہ نواز شریف کو جس کیس میں ہٹایا انہوں نے پناما کا 1500 چور مچایا, اقامہ نکالا, اس کا مطلب ہے پناما کا کیس نہیں بنتا تھا ان کے اوپر, اور یہ اس کے باوجود یہ نہیں بنا سکے کہ ساکن نثار جیسا آدمی جو پی ٹی آئی میں باقاعدہ پی ٹی آئی کا ایک ورکر کی طرح سے اس نے انتخابات میں کام کیا. پھر آپ مجھے بتائیں, میں نے تو ایک چیز نیٹ کے چیئرمین کی بات کی ہے, آپ ذرا شوکت صدیقی کی تقریر اٹھا لیں, آپ جسٹیفائی عیسا کے دھرنوں کے بارے میں اس نے جن لوگوں کو بائی نیم پین پوائنٹ کیا, اس کے بعد باقی بات کیا رہ جاتی ہے کہ یہ کر کے رہے ہیں. ہم تو انوسینٹ ہیں, ہم
हमने इनोसेंट, हमें तो कोई एक हाई कोर्ट ने इनोसेंट कह दिया है। अकामा क्या चीज होती है, मतलब हेलीकॉप्टर केस क्या इसपे इमरान खान पे नहीं है, उसपे उसको कोई कुछ नहीं कहता, और फिर वो मुंह से कह रहे हैं जी इसलिए नहीं कहते कि हुकूमत गिर जाएगी, तो फिर अक्रॉस दी बोर्ड तो नहीं हो रहा ना मेरे भाई। तो हम यही कह रहे हैं कि जो लोग काम करने वाले होते हैं ना वो करप्शन नहीं करते, हमारी पार्टी ने काम करके दिखाए हैं। ये तो मतलब कि हर आदमी एक ही तोता कहानी है कि जी पिछली हुकूमत ने इतने कर्जे ले लिए, कितना कर्जे ले लिए भाई, अच्छा 10 साल का बताते हैं, पीपल पार्टी का भी खाता हमारे अंदर डाल के, भाई आप हमारे 5 साल की बात करें, 2008 में अगर 6,000 था तो 2013 में 15,000 हमने नहीं पहुंचाया था, और 2013 में हमें किस हालत में मुल्क मिला था, हमने किस हालत में छोड़ा, 19,000 हमने रिजर्व छोड़े, आज तक ये वो 19,000 पूरे नहीं कर सके, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दिया, हमने बिजली का मसला हल करके दिया, दहशतगर्दी का हल करके दिया, वो सारी चीजें दोबारा से शुरू हो चुकी हैं।
ठीक।
और फिर ये सारी दुनिया को पता है कि ये कठपुतलीज हैं, ये इलेक्शन जीते नहीं, ये इलेक्शन हारे हैं, इनको बाकायदा लाया गया, ये भी सारी दुनिया कहती है सबूत।
चल आपके वर्जन में जरा जफर अली शाह साहब और इम्तियाज आलम साहब से क्विक इस पे ऊपर कमेंट्स लेके फिर इसको वाइंड अप करता हूँ। जफर अली शाह साहब, आपने अपने फार्मर कुलीग हैं, आप भी आपके कुलीग तो हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं, सो क्या कहेंगे आप, वो ये कहते हैं कि बिल्कुल वो कॉन्फिडेंट हैं कि ये सारी विक्टिमाइजेशन है और ये वन साइडेड एहतसाब है, और
शाहदुल्ला खान साहब हमारे भाई हैं, बेहतरीन पॉलिटिकल वर्कर हैं, और वो जिस पार्टी में है उनको डिफेंड करना उनका पॉलिटिकल फ्रीजा बनता है। लेकिन मैं पहले कह चुका हूँ आपको कि ये विक्टिमाइजेशन वाली बात नहीं है। कुछ ही एफ आई आर का या रेफरेंस का नाम बता दें जिसका कंप्लेनेंट कोई पीटीआई वाला हो या इमरान खान साहब, कोई नॉट इवन ए सिंगल, एक भी नहीं है। और अगर अधारों ने बतौर अधारों के उन्होंने अगर अपनी इंक्वायरियां की हुई है, हालांकि इनके अब भी इनके लोग बैठे हुए हैं वहां पर मशीनरी में, जो 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 मशीनरी अभी गवर्नमेंट है वो आज भी बैठे हुए हैं। कभी आपने सुना कि 9-10 महीने तक बेल बिफोर अगस्त चलती रही हो, तो यहाँ तक तो लेटिट्यूड दिया गया। लेकिन अगर और फिर जहर है ट्रायल फेस करेंगे तो ये तो नहीं
कि डायरेक्ट कोई सजा नहीं है, ऑफकोर्स उसके बाद ट्रायल है, मुकदमा दायर। जी संभव कीजिएगा इम्तियाज आलम साहब, आपने दोनों सीनियर लीडर्स हैं अपनी अपनी पार्टी से, उनका नुक्ता नज़र सुनाएं। अब ये ट्रांसपेरेंसी कैसे होगी, क्योंकि ये एहतसाब का जो भी निज़ाम है, सो जब तक ये ट्रांसपेरेंट नहीं होगा तो वो नतायज हासिल नहीं किए जा सकते अगर ये क्रेडिबल नहीं है। और फिर अब ये गिरफ्तारियों के बाद आप क्या देखते हैं, कुछ रिकवरीज होंगी, कुछ डील, कुछ ले दे के बात ख़त्म की जानी चाहिए, ये किस तरफ जाएगा सारा मामला आपके ख्याल में?
देखिए साहबदारों से देखो रिकवरी होगी नहीं, ना वो रिकवरी करवाएंगे और किसी को सजा दे देंगे, वो अपील करेगा, मसला चलता रहेगा, अगर वो अदालत ने कंफर्म कर दी वो सिग्मा बन जाएगा किसी एक या दूसरे सियासतदान के।
सही।
लेकिन ये सारा अभी शाह साहब फिर जिक्र कर रहे थे जो कर्जे आए कहाँ चले गए, अब शाह साहब को पता होना चाहिए कर्ज कितनी किस्म के होते हैं। एक प्रोजेक्ट अगर किसी भी कर्जा होता है, जैसे पिछली एक मुल्क में तीन से तीन इन्वेस्टमेंट आए, कर्ज लेगी आप इन्वेस्टमेंट की, अब वो तो कहीं भी गया, तो दिखा नहीं गया पाकिस्तान में, तो आईएमएफ मिलते हैं वो भी बड़ी शरायत के तहत और उनकी बड़ी मॉनिटरिंग होती है, ऑडिट होता है, दिखा नहीं दे सकते के जरिए, ये आपकी मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए, स्पेकुलेशन के जरिए वो शाहदार इस्तेमाल करते रहे हैं ठेकों को और क्या नाम है जैसे स्पेकुलेशन को और मुख्तलिफ तरीके क्या करते रहेंगे। लेकिन सवाल ये कि मैं वही बात करना चाह रहा हूँ कि असल बात यह है कि पाकिस्तान डोमिनेंटली करप्ट है, जो लोग पावर में हैं किसी पोजीशन में हैं वो किसी ना किसी तरह की करप्शन में हैं।
तो फिर इस हिसाब से तो कभी भी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती ना, इसका मतलब ये कि सबको माफ करें और एक नया निजाम वजह करें कि आइंदा से करप्शन नहीं होगी।
नहीं, आप देखिए नहीं, हम सायों के पीछे भाग रहे हैं, हम आज करप्शन हो रही है, इमरान खान के लिए $10 अरब जो है वो जाते हैं पाकिस्तान से, तो मैं कह रहा हूँ जा रहे जाते हैं आप रुकी उसकी सिस्टम के खिलाफ
लाइए
ना सिस्टम बेहतर
और उसमें कोई सवाल उठाना सीखे जी। इम्तियाज साहब बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप चंद सेकंड और काइंडली रहिएगा क्योंकि एक और भी गिरफ्तारी है वो लंदन से है उसके ऊपर क्विक कमेंट्स आपके लेने हैं। आपके बेहद ममनून है हम सैयद जफर अली शाह साहब आपने हमें ज्वाइन किया जायद गिश्कोरी साहब सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब आप सबका बेहद शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। एक ब्रेक ब्रेक के बाद वापस आते हैं लंदन गिरफ्तारी पर बात करते हैं।
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन आपसे मुखातिब है मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन है प्रोग्राम में जहां रंग में हूं असद हसन और बात हम करेंगे लंदन में होने वाली एक अहम और बड़ी गिरफ्तारी के ऊपर। आज लंदन पुलिस की जानिब से एक स्टेटमेंट जारी किया गया जिसमें बताया ये गया कि एक शख्स को जिनकी उम्र 60 साल के करीब है या 60 की दिहाई के वो पेटे में हैं उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और एमक्यूएम से मुतालिक एक शख्सियत है और उनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि वो हेट स्पीच यानी नफरत पर मबनी तकारीर जो हैं वो इसके मुर्तकिब हुए हैं। फौरी तौर पर बहुत सारे लोगों का जहन इसमें अल्ताफ हुसैन की तरफ गया और फिर पाकिस्तान के मीडिया ने इस बात को बड़ी तस्दीक के साथ ये नशर किया कि वो अल्ताफ हुसैन हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बानी उनको बरतानिया के दारुलकूमत लंदन से पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस की जानिब से वॉइस ऑफ अमेरिका को भेजे गए बयान में भी यह कहा गया है कि मजकूरा शख्स को कई ऐसी तकारीर से मुतालिक जारी तहकीकात के सिलसिले में मंगल को हिरासत में लिया गया जिनके बारे में ख्याल है कि वो हेट स्पीच के जुमरे में आती हैं। ऑफिशियली अभी तक उनका नाम नहीं बताया गया लेकिन पाकिस्तानी ज़राए इब्लाग ये दावा कर रहे हैं कि वो अल्ताफ हुसैन ही हैं। सो इस गिरफ्तारी का क्या मतलब है? क्या फौरी तौर पर यह भी जहन में सवाल आता है कि क्या उनको पाकिस्तान ले जाया जा सकता है? इसके ऊपर भी हमने एक्सपर्ट से बात की है लेकिन जनरली अल्ताफ हुसैन की ये गिरफ्तारी उनकी जो इस वक्त बहरहाल जितनी भी बाकी है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान चैप्टर तो मुकम्मल तौर पे बज़ाहिर उसे अलग हो चुका है ये वजह है कि हमने कोशिश भी की है तो कोई कमेंट्स देने के लिए भी उस पर तैयार नहीं है। सो बाकी जो उनके मसाइबीन हैं या उनके जो इत्यादि हैं साथी हैं उनके लिए इस गिरफ्तारी का क्या मतलब है और क्या इम्पैक्ट हो सकता है हमारे साथ हैं इस पर बात करने के लिए साकिब राजा साहब पाकिस्तानी सीनियर जर्नलिस्ट हैं यूके के अंदर और हमें ज्वाइन कर रहे हैं आमिर लतीफ़ साहब सीनियर जर्नलिस्ट और ये ICIJ के साथ भी उनकी वाबस्तगी तजयकार हैं और इम्तियाज़ आलम साहब ने हमारे साथ होना था लेकिन उनकी लाइन ड्रॉप होगी। अमजद मलिक साहब से हमने बात की है बैरिस्टर हैं और कानूनी अमूर के माहिर हैं और कुछ हमने कराची के आवाम से कि अल्ताफ हुसैन साहब के एक इशारे के ऊपर जो शहर बंद हो जाता था आज उनकी गिरफ्तारी के ऊपर भी कोई एहतजाज किसी जगह पर नज़र नहीं आया है। साकिब बहुत शुक्रिया आपका आपसे हम शुरू करते हैं ये किस पस मंज़र में है और गिरफ्तारी ये फौरी तौर पर ज़मानत हो सकती है या इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हैं?
असद बेसिकली ये गिरफ्तारी जो है इसका जो बैकग्राउंड है वो 2016 में जो है एक तकरीर जो है ब्रॉडकास्ट की गई थी पाकिस्तान टीवी चैनल्स पर जो कि बताया गया कि उसको हेट स्पीच में लिया गया। इसकी बाकायदा एक कंप्लेंट लॉन्च की गई थी कि ऐसी तकरीर जो है वो किसी भी मुल्क में फसाद या बहुत बड़ा हंगामा खड़ा करने के मुतरादिफ होगी और ये हेट स्पीच के जुमरे में आती है। हेट स्पीच को आप पता है कि आपको अंदाजा होगा कि इन मुल्कों में कितनी सख्त उसको लिया जाता है सख्ती से उसको टैकल किया जाता है। तो उस वक्त तो यही कहा गया था कि हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे अगर ये हेट स्पीच के जुमरे में आई तो इसको इस पर एक्शन लिया जाएगा। इससे मुतालिक इसी स्पीच 2016 में जो की गई थी इससे मुतालिक पाकिस्तान अथॉरिटीज ने कई बार स्कॉटलैंड यार्ड जो यहाँ का पुलिस है उससे राबता भी किया था और बार बार यही कहा जाता था कि हम इसको अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। आज जो गिरफ्तारी बताई गई है इसको उसी तनाजर में लिया गया है 2016 की एक स्पीच और इससे पहले की भी स्पीचेस को बाद में शामिल कर लिया गया था। बेसिकली शिकायत 2016 में जो हुई थी अगस्त में स्पीच उसको बनाया गया था लेकिन उस बाद में उन पिछली जो चंद स्पीचेस थी उनको भी बीच में ऐड कर लिया गया था। फिलहाल असद इस वक्त जो पोजीशन है जहां तक आपने जमानत की बात की थी इन मुल्कों में जमानत तो जो है वो किसी भी केस में अगर वो समझे तो उसको दी जा सकती है लेकिन एक टाइम फ्रेम के अंदर रहकर दोबारा बुलाया जाता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें थोड़ा सा मुख्तलिफ है इस स्पीच में क्योंकि इसकी पहले तहकीकात 2-3 साल से जारी थी और अब गिरफ्तारी जो है उसको बाकायदा अमल में लाया गया है तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने इसको तकरीबन 3 साल तक इन्वेस्टिगेट करने के बाद इस पर लीगल एक्शन या कानूनी चारा जो है गिरफ्तारी अमल में लाया है। फिर भी अंदाजा यही है जो माहिरीन है कानूनी उनका यही कहना है कि गिरफ्तारी रजिस्टर्ड करने के बाद मजीद इसको टाइम दिया जाएगा और उनसे उनकी जाहिर उनको लीगल मौका दिया जाएगा कि वो अपनी इस चीज को साबित करें और इस पर फाइट करें, इस पर अपना वर्जन जो है उनके वकला वो जारी करें।
सो साकिब, क्या फिर ये अज्यूम किया जाए कि ऑलरेडी पाकिस्तान में जहरी अदालत के हुक्म के तहत एक मीडिया ब्लैकआउट है अल्ताफ हुसैन साहब के लिए? सो क्या अगर बरतानिया में भी इस तरह के हालात पैदा होते हैं तो वो जो कम अज कम जो फेसबुक लाइव के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए अपने पैगाम देते हैं जिसमें बाज़कात तुंदी तुर्शी या सख्ती कम वेश उसी तरह की आ जाती है, सो उसके ऊपर भी कदगन लग सकती है?
असद इस मुल्क में तो नहीं मेरा ख्याल है लग सकती। अगर साबित हो जाए कि इन्होंने जो स्पीच की थी वो हेट स्पीच के जुमरे में आती है तो शायद इनको महदूद कर दिया जाएगा, इनकी स्पीचेस जो है उनको ऑन एयर करने के लिए। सोशल मीडिया पे एज सच मेरा नहीं ख्याल कि इनको इस तरह बाउंड कर दिया जाएगा, क्योंकि सोशल मीडिया का एक ये चांद भी है कि आप एक आईडी से दूसरी आईडी पे जाकर कन्वर्ट करके कर सकते हैं और जब तक वो ब्लॉक होगी तब तक वो स्पीच जो है वो काफी फैल चुकी होती है। सो इस मुल्क से बाहर रहकर भी उसको आईडीज बनाकर वहां से भी की जा सकती है। सो मेरा ख्याल है कि सोशल मीडिया पे शायद इतना इम्पैक्ट ना हो, लेकिन ऑन एयर या होने का जहां तक सवाल है वो पाकिस्तान में आपको पता है कि काफी अरसे से इनको इनकी स्पीचेस को बैन कर दिया था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कि वहां पर इनकी किसी स्पीच को ऑन एयर ना किया जाए। सोशल मीडिया का मेरा अंदाजा है कि शायद
वो आसान नहीं,
बाउंड तो किया जाएगा।
आमिर लतीफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी। गिरफ्तारियों का बज़ाहिर लग रहा है कि मौसम है, पाकिस्तान में भी आला सतह की गिरफ्तारियां और फिर आज लंदन में भी होगी, लेकिन कोई इर्तियाश कराची ने महसूस नहीं किया लंदन में इस गिरफ्तारी का बज़ाहिर, आपका क्या मुशाहिदा रहा?
आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, कराची बिल्कुल नॉर्मल है, कोई ऐसी चीज नहीं है। इसकी दो वजूहत हैं, एक स्वास्थ्य दिल में जैसे है, और पहले साकिब ने भी बताया कि पाकिस्तान में एक तवील अरसे से इनका ब्लैक आउट है और पाकिस्तान की आवाम को उनके मुतल्लिक खबरें ना सुनने की एक आदत काफी साल से हो चुकी है। दूसरी बात यह है कि आपको इलम है कि जब एमसीएम अपनी तंजीम की वजह से बहुत यानी मानी जाती है, जानी जाती है, और ये उसकी तंजीम थी कि जो मिनटों और घंटों के अंदर जो है वो शहर को बंद करवा दिया करती थी। अब हुआ यूं है कि एक तो उसकी तंजीम बुरी तरह से तकसीम हो गई है, पाकिस्तान एमसीएम पाकिस्तान पीएसपी और इसी तरह जो है वो एमसीएम लंदन। तो अब जो एमसीएम लंदन है वो पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी ऑपरेटिव नहीं है, वो बिल्कुल नीचे है, जेर जमीन है, उनके जो लोग हैं वो सामने आके ना तो कोई बयान देते हैं, ना उनका कोई यहाँ पे अहदेदार है, और ना ही कोई ऐसी चीज है कि जिसकी बुनियाद पर कहा जा सके कि ये वो शख्स है जो एमसीएम लंदन का। तो इस जब से पाकिस्तान जो खालिद मकबूल सिद्दीकी के सरबराही में जो क्राइम है पाकिस्तान पैदा और पाकिस्तान का चैप्टर, उसने अपने आप को मुकम्मल तौर पर इनसे आइसोलेट कर लिया है, और अल्ताफ हुसैन ने खुद इनको जो है वो गद्दार का टाइटल देके एमसीएम से बाहर किया हुआ है। और इसने जो उनको आपने भी खुद ट्राई किया होगा और हमने भी ट्राई किया कि किसी तरह वो इससे कोई बात करें, लेकिन उनकी तरफ से मुकम्मल खामोशी है और हमें पूरा यकीन है कि उस पर कोई प्रेस रिलीज जो है वो जारी नहीं करेंगे। सिर्फ उसका पर कमाल है यहाँ पे जिन्होंने
बात ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया
साबित आदमी के जिन्होंने इस पे बात की है और इसको बड़ा सराहा है वो सब।
So, इसमें क्या समझा जाए कि एक तो खैर पॉलिटिकल लीडरशिप है ना, ये उनके साथ ही है, वो उनके हिमायत से या उनके पीछे नहीं खड़े हैं, या आम आदमी भी अब उनकी आवाज नहीं सुन रहा है?
इसमें दो राय है सर, ये इस वक्त जज करना बहुत मुश्किल है कि कराची का आम आदमी किस हद तक उनकी राय नहीं सुन रहा है। उसकी वजह हमारे पास कोई इस वक्त बैरोमीटर ऐसा नहीं है। अगर हम 2018 के इलेक्शन की बात करें तो उसमें ये एक ये कहा जाए कि मुकम्मल कराची की वही पोजीशन है जो एमसीएम में प्रिंट हो रहे और अल्ताफ हुसैन के खिलाफ कार्रवाई से पहले की थी, तो ये कहना ज्यादा होगी, वो सिचुएशन नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अल्ताफ हुसैन बिल्कुल यानी कि लोगों के दिलों से उतर चुके हों और उनके जो मकबूलियत का पैमाना हो वो सिफर या पांच या नहीं। मेरा ख्याल ये है कि अभी भी एक अच्छी खासी तादाद एमसीएम की जो है वो अल्ताफ हुसैन के पीछे है। उसकी एक वजह है, देखिए एमसीएम का न्यूक्लियस अल्ताफ हुसैन है, यानी जो जिस बुनियाद पे वो तंजीम कायम हुई उस तंजीम की बुनियाद ये थी कि पाकिस्तान की जो उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी या जिनको मुहाजिर कहा जाता है उनके हुकूक की तहफ्फुज़ और उसके लिए, वो वजह जो है वो ताहाल सिंध में मौजूद है और वो वजह ताहाल एक बोन ऑफ कंटेंशन है। जैसा कि आपके इलम में है सिंध एक दो लिसानी सूबा है और जिसकी बुनियाद और इसी की बुनियाद पर जो है वो एमसीएम की बुनियाद, तो वो امداد جب تک موجود ہے تو عام آدمی یعنی الطاف حسین کا حمایتی جو عام آدمی ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایم سی ایم کی بقا اسی صورت میں ہے یا وہ اسی صورت میں مضبوط رہ سکتی ہے, اسی صورت میں پرفارم کر سکتی ہے جب اس کا نیوکلیس جو ہے وہ موجود ہو. تو وہ نیوکلیس ابھی تک ایک بڑی تعداد جو ہے وہ الطاف حسین کو سمجھتی ہے. تو اس وقت پہ اب میں جیسے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ان کی مقبولیت کا پیمانہ 100% جانچنا بہت مشکل ہے انٹل انلیس کوئی ایسی چیز بنے کہ یہ الیکشن میں حصہ لیں
اور ظاہر ان کو اوپن فیلڈ ملے جس میں وہ اپنا پرفارم کر سکیں,
اندازہ لگا سکیں ان کی حمایت کی.
بہت شکریہ عامر لطیف صاحب, آپ نے میں جوائن کیا. ثاقب راجہ صاحب آپ کے بھی ہم ممنون ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اور سامعین ہم آپ کو بیرسٹر امجد ملک صاحب کی گفتگو سنواتے ہیں, یہ مینچسٹر بیسڈ ہیں. ان سے قمر عباس جعفری نے کچھ دیر پہلے بات کی ہے اور ٹیکنیکل کوشچن ہے کہ کیا ان کو پاکستان اگرچہ ہے یا پاکستان کی حکومت, تو کیا الطاف حسین کو جو پاکستان میں کئی مقدمات میں مطلوب ہیں ان کو پاکستان لایا جا سکتا ہے, اس میں کیا باتیں ہیں, کیا مشکلیں ہیں؟ بیرسٹر امجد ملک صاحب کی گفتگو.
میڈیا میں بہت زیادہ خبریں سنتے ہیں کہ کوئی ایم او یو سائن ہو گیا ہے جو کہ ابھی تک پبلک نہیں کیا گیا. پاکستان اور برطانیہ کا بڑا ٹرکی ریلیشن شپ ہے. برطانوی عدالتیں پاکستان میں بندہ بھیجنے کے اوپر ابھی تک جو ہے وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے. ابھی تک انہوں نے کوئی ہائی پروفائل آدمی پاکستان کے حوالے نہیں کیا. ماضی میں دو تین چیزیں تھیں جس کی وجہ سے آج تک بندہ پاکستان نہیں جا سکتا. ایک تو پاکستان میں سزائے موت ہے, دوسرا جو کنفیشنری اسٹیٹمنٹ لیتے وقت ٹارچر کا استعمال ہوتا ہے, تیسرا ہیومن رائٹ جو سچویشن ہے وہ اتنی حوصلہ افزا نہیں ہے. تو یہاں کی عدالتیں جو بہت سی میجسٹریٹ ایکسٹریڈیشن کو دیکھتے ہیں, انہوں نے آج تک پاکستان کو یہ اس طرح کی ریکویسٹ, چاہے وہ برامدہ بگٹی ہو, الطاف حسین ہو یا ہائی پروفائل پولیٹیکل اپوزیشن کے جو جماعت کے لیڈرز ہوں, وہ انہوں نے کوئی ان کو اتنا درغور نہیں سمجھا. اب بھی سچویشن ابھی تک تو یہی ہے کہ ایکسٹریڈیشن پاکستان کا کوئی معاہدہ نہیں ہے, کنونشن سگنیٹری نہیں ہے دونوں, اور برطانیہ کیونکہ یورپین کنونشن آن ہیومن رائٹ کا سگنیٹری ہے تو وہ ایسے کسی بھی معاملے کے اوپر بہت غور سے دیکھے گا, اور اگر حکومت کو فیصلہ کرے گی تو وہ اس کو عدالت میں لے کے جائے گی, عدالت سے کہے گی کہ یہ دیکھے اور ثبوت پرائما فیسائی دیکھے کہ کیا ان کے پاس کیس ہے, اور اگر کیس ہے شواہد ہے تو کیا اس شخص کو اگر ہم حوالے کرتے ہیں تو کیا اس کو ڈیو پروسیس آف ہے ٹرائل ملے گا, کیا اس کے اوپر ٹارچر تو نہیں ہوگا کنفیشن لینے کے لیے, کیا اس کو ٹرائل کے دوران اور یا اس کے نتیجے میں سزائے موت تو نہیں ہوگی. اب وہ جو پاکستان گارنٹیاں دے گا جو کہ آج کل کچھ اشخاص کے بارے میں وہ ایم او یو یا اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ پیدا کر رہے ہیں, تو وہ عدالتوں نے دیکھنا ہے کہ ان کا ٹریک ریکارڈ پچھلے 10 سال میں کیا ہے, کیا ٹریک ریکارڈ ایسا ہے کہ پاکستان میں کوئی ایسا شخص دے دیا جائے جو پولیٹیکل اینٹیٹی ہے کہ اس کے اوپر ٹارچر نہیں ہوگا یا اس کو سزائے موت نہیں دی جائے گی. ابھی تک تو حوصلہ افزا نہیں ہے. مجھے نہیں لگتا کہ الطاف حسین صاحب کا اگر ٹرائل ہو یا ان کے اوپر سزا ہو یا ان کی شہریت منسوخ ہو تو ان کو پاکستان کے حوالے کیا جائے گا. ابھی تک کوئی کنوینسنگ ایویڈنس نہیں ہے کہ پاکستان میں حالات اتنے بہتر ہو گئے ہیں کہ ان کے اوپر جو ہے وہ فیئر ٹرائل یا ڈیو پروسیس میں جو ہے انٹرفیئرنس نہیں ہوگی یا انٹیمیڈیشن.
اردو وی او اے کے فیس بک پیج پر اب نیوز بلٹنز بھی. پیر سے جمعہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 8, 9, 10 اور 11 بجے. ہمارے فیس بک پیج کی آئی ڈی ہے www.facebook.com/voaurdu. تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھیے ہمارے فیس بک لائیو بلٹنز.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے, پروگرام میں جہاں رنگ میں ہوں اسد حسن, اور آخر میں ہم بات کریں گے بجٹ 2019-2020 کے اوپر. آج قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا, وفاقی وزیر مملکت حماد اظہر انہوں نے یہ بجٹ پیش کیا اور ملک میں جو درپیش اقتصادی مسائل ہیں اس کا انہوں نے تذکرہ کیا, اور اس کی ذمہ داری ان کے بقول سابق حکومتوں پر عائد ہوتی ہے, اور ملکی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے انہوں نے کئی ایک تجاویز پیش کی ہیں. وزیر مملکت کا کہنا یہ تھا کہ اپنے اخراجات میں بڑی کٹوتیاں کی گئی ہیں اور دفاعی بجٹ میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا. پچھلے سال 1150 ارب روپے کی سطح پر جو ہے اس کا وہ برقرار رہے گا, اور وفاقی بجٹ کا کل حجم جو ہے وہ تقریباً 7022 ارب روپے بنتا ہے. یہ کیسا بجٹ ہے اگر آپ اپوزیشن کے لوگوں سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں یہ لفظوں کا گورکھ دھندا ہے اور یہ در حقیقت غریب کے اوپر بوجھ ڈال دیا گیا ہے, اور اگر آپ حکومت کے لوگوں سے پوچھیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بہتر ان حالات میں عوام دوست بجٹ ہو نہیں سکتا تھا. یہ تو حکومتوں کا اور اپوزیشن کا ورژن ہے, ذرا انڈیپینڈنٹ انالسٹ کے پاس جاتے ہیں کہ گیون کنڈیشنز کے اندر یہ بجٹ کیسا ہے. نادیہ فاروق اکانومسٹ ہیں, کنسلٹنٹ ود ایشین ڈیولپمنٹ بینک. نادیہ بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. کیسا ہے یہ بجٹ, اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ کیا اس میں یہ سمجھا جائے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو حالیہ معاہدے ہیں ان کی شرائط کے پس منظر میں اس بجٹ پہ کام کیا گیا ہے اس کی تشکیل پہ؟
جی وعلیکم السلام اسد، بہت شکریہ مجھے پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے. ہاں آج ہم سبھی نے اس بجٹ تقریب کو سنا ہے، بہت غور سے دیکھا بھی ہے اور اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ بھی اب اویلیبل ہیں. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ آئی ایم ایف ڈریون بجٹ ہے اور آئی ایم ایف کا ایجنڈا ہے، مان لیا چلیے آئی ایم ایف ڈریون ہے جو کچھ بھی ہے، میرے خیال سے ہمیں تو اپنے ملک کے لیول پہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہمارے لیے بہتر ہے اور کیا ہمارے لیے نہیں ہے. میں پہلے بھی ایک پروگرام میں کہہ چکی ہوں کہ آئی ایم ایف کو اس سے کیا کہ ہم چاہے ہم بہت بہتری کی طرف جائیں اور چاہے ہم بالکل بینک کرپٹ ہو جائیں، اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں، یہ ہمارا کنسرن ہے، ہمیں اس سے کنسرن ہونا چاہیے. آج کے بجٹ کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں کچھ چیزیں بہت کرول نظر آتی ہیں، ان دا سینس کہ اس میں جو روز مرہ استعمال کی اشیاء ہیں، عام گھریلو استعمال کی چینی اور ایل این جی اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، ان میں ڈیوٹیز اور سیل ٹیکس وغیرہ بڑھا دیے گئے ہیں. لیکن اگر ہم اس کی دوسری طرف دیکھیں، ایگریکلچر سیکٹر جو کہ بہت اگنور تھا، اور اگر ہم اس کو ڈیپر ڈاؤن نیچے جا کے بائیفرکیٹ کریں تو اس میں نظر آتا ہے کہ گورنمنٹ نے بہت اچھے اقدامات اٹھائے ہیں. اسی طرح رینیوبل انرجی جو ہے، سولر پینل اور اس سے منہکا جتنی بھی چیزیں ہیں جو شامل ہوتی ہیں اسے ایک پینل کو بنانے کے لیے، اس نے ڈیوٹی میں بہت کٹوتی کی ہے. جی ایس ٹی کو بالکل اسٹیگنٹ رکھا ہے، اس کو نہیں بڑھایا. ایک طرف جو گورنمنٹ نے ایس آر او 1125 جو ہے اس کو ختم کر دیا ہے، یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے. لیکن دوسری ہی طرف گورنمنٹ نے جو کاٹن گیند ہے اور ماربل ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ڈیوٹی اور ٹیکس جو ہے اس کو بڑھا دیا ہے. یہاں بھی میرا کنسرن یہ ہے کہ ایک طرف تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس کا خسارہ بہت زیادہ ہے، ابھی بھی بڑھ رہا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ایکسپورٹس بڑھیں. تو جو ماربل کا سیکٹر تھا وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. آگے ہم اسپیشل اکنامک زونس کی بات کر رہے ہیں سی پیک کے اندر، تو ماربل کا تو پورا پورا ایک اسپیشل اکنامک زون ہی کے پی کے اندر جو ہے وہ ہم ماربل کو دینا چاہ رہے تھے. لیکن مجھے نہیں معلوم کہ گورنمنٹ آگے جا کے فردر، کیونکہ اس میں کوئی پالیسی ایکشن اور کوئی ڈائریکشن تو نہیں دی گئی، یہ تو اسی طرح سے ہے جو کہ روایتی انداز کا ہوتا ہے کہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کی محصولات ہیں اور کہاں آپ نے خرچے کرنے ہیں اور آپ نے آگے جو ہے وہ کس کے لیے کس مد میں کتنے پیسے جو ہیں وہ ایلوکیٹ کرنے کی تجویز ہے، یہ آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح سے لے کے چلیں. تو یہ تو ابھی فردر ہم آگے جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ گورنمنٹ کی فردر کیا پالیسیز ہیں. اب اگر ہم دوسری طرف آ جائیں کہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ جو ٹیکس ریونیو ہے اس کو بڑھائے، اور ایک طرف ہمارے صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہم نے کافی کٹوتی کی ہے ایکسپینڈیچر کے اندر، تو کٹوتی تو کوئی خاص ایسے نظر نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے وفاقی وزراء کی جو تنخواہیں ہیں ان کو کم کر دیا جو کہ بہت ہی مینیمل سا افیکٹ اس کا آئے گا. ہاں یہ ضرور اچھا کیا کہ جیسے ہم نے لاسٹ پیپلز پارٹی کا جو دور تھا اس میں ہم نے تقریباً 50% کے قریب یکمشت بیٹھے بیٹھے تنخواہیں بڑھ گئیں اور بغیر کسی ٹریننگ، بغیر اسکل ڈیولپمنٹ، اور اس کا جو آپ کا ریکرنٹ ایکسپینڈیچر کا جو بجٹ ہوتا ہے اس نے اس کو ڈائریکٹلی ہٹ کیا، جو کہ آج تک ہم کہہ رہے ہیں اسی کے اثرات. اس لحاظ سے انہوں نے کوئی پولیٹیکل شو آف نہیں کیا کہ ہم صرف لوگوں کی تنخواہیں بڑھا دیں، کیونکہ ان لوگوں کو پولیٹیکل چیزوں کو دیکھنا بھی بہت ضروری ہے. جو کہ اس طرح سے دیکھا جائے تو انہوں نے بالکل ہی اپیرنٹلی دیکھے تو بالکل ایک جائز قسم کے فیصلے کیے ہیں. اور میرے خیال سے یہ جو عام استعمال کی اشیاء کی جو قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، یہ شاید ہمیں پچھلے ٹینیورز کے اندر سے تھوڑا تھوڑا کرنا شروع کر دینا چاہیے تھا. اب یہ ایک دم سے ہمیں بڑا لگنے لگا ہے، لیکن یہ کوئی ناجائز بات نہیں ہے. ہمارے بہت سارے اکنامک انڈیکیٹرز اپنی جگہ سے بہت ہل چکے ہیں.
اعظم خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ماہر معاشیات، اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے مزمل اسلم صاحب نے بھی، اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. اعظم خان صاحب، آپ کی رائے کیسا ہے یہ بجٹ 2019-2020 اس حکومت کا پہلا بجٹ؟
میں سمجھتا ہوں کہ جو پہلا بجٹ ہے حکومت کا، جس طرح کی توقعات کی جا رہی ہے اسی طریقے کا بجٹ ہے، اور کوئی اتنی اچھی توقعات نہیں ہیں. اور جس طرح سے پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے اور ہم بات کر چکے ہیں کہ 600-700 ارب روپے کے ٹیکسز لگیں گے مزید، اور وہی کیا حکومت نے کہ جس طرح کی ان کی پرفارمنس تھی پچھلے 10 مہینے کی، جس میں 700 ارب روپے کے مزید نئے ٹیکسز لگاتی ہیں انہوں نے. تو عوام دوست بجٹ کی جو بات کر رہے تھے کچھ دنوں پہلے فائنینس منسٹر سے لوگ، تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام دوست بجٹ سے ہر چیز لگے، عوام دشمن بجٹ اس سے ضرور کہا جا سکتا ہے. کیونکہ جس طرح کے ٹیکسز لگے اور جس طرح کا اضافہ کیا گیا، جس طرح کا بجٹ بنایا گیا ہے، اس میں تو مجھے نظر نہیں آتا کہ عوام کو کسی بھی لیول پہ کنسیڈر کیا گیا ہے. اگر اسی طریقے سے بجٹ دینا تھا اور اسی طریقے سے یہ تمام چیزیں بتانی تھی لوگوں کو، تو ظاہری بات ہے کہ لوگ پہلے ہی اتنے زیادہ مشکلات کا شکار ہیں پچھلے 10 مہینے کی پرفارمنس سے لے کے. پھر پاکستان کے جو لا اینڈ آرڈر کے حالات ہیں وہ بھی اچھے نہیں ہیں، پاکستان کے جو باقی جغرافیہ معاملات ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہیں. پھر اکانومی کے حوالے سے جو تھوڑی سی ایک اسٹیبلٹی نظر آ رہی تھی وہ کافی حد تک ہماری खत्म हुई 2017 के बाद जब पिछले प्राइम मिनिस्टर को जो है वो नाइल किया गया, तो उसके बावजूद भी लोगों ने सस्टेन किया, लोगों को लगा कि नया पाकिस्तान है, नए हालात है, नई चीज़ें हो रही हैं, शायद चीज़ें बेहतर हो सकेंगी, शायद मामला बेहतर हो सकेंगे। लेकिन इतना बड़ा टैक्स लगाना और इतने ज़्यादा बोझ डालना, और ये बोझ आप देखिएगा कि आने वाले वक्त में बहुत भारी साबित होगा हुकूमत वक्त के लिए भी, क्योंकि जो सब्सिडी जो खत्म करने जा रहे हैं और आवाम को पास ऑन करने जा रहे हैं, जिसका उन्होंने पहले भी किया कि दिल्ली की कीमत में 30% का इजाफा कर दिया, गैस की कीमत में 145% का इजाफा कर दिया, पेट्रोल की कीमत में जो है वो 30% का इजाफा कर दिया, रुपया आपका 40% मजीद दी जा रही हो चुका है अभी तक। तो मतलब आवाम तो पहले ही किसी भी हालत से चुने थे और किसी भी हाल से उनको लग नहीं रहा था कि उनके लिए कुछ बेहतरी आ रही है, लेकिन शायद ये उम्मीद की जा रही थी आवाम के किसी हद तक एक तबके से कि कई चीज़ें बेहतर हो जाएँ, कुछ रियायत दी जाए, कुछ सहूलत दी जाए, लेकिन ये बजट आने के बाद मैं समझता हूँ कि चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। और जिस तरह से बिजली को जब सब्सिडी खत्म कर रहे हैं, 12.5 रुपये पर यूनिट के प्राइसिस से बिजली के कंज्यूमर आए, ये 16 रुपये पर यूनिट की प्राइसिस हैं बिजली के, 450 अरब रुपये की सब्सिडी दी जाती थी पिछली हुकूमत से, ये कम करके उन्होंने 270 अरब रुपये की सब्सिडी मजीद खत्म करने जा रही है। तो आप समझिए कि आने वाले 3 से 6 महीने में 19 से 19.5 रुपये पर यूनिट बिजली के प्राइसेज होंगे। तो जिस आदमी का बिल 4,000 रुपये का आता था, उसका 10 से 11,000 रुपये का बिजली का बिल आएगा, यही पेट्रोल में नजर आ रहा है। मैं यही चीज़ें सब्सिडी खत्म करना अच्छी बात है, लेकिन जहाँ पे 22 करोड़ की आबादी हो और 11 करोड़ अफराद जो है वो शराय खानगी में इतने मतलब एक एक इस सबके से चालू होते हो जिनकी मंथली इनकम 10,000-15,000 रुपये हो, आप मुझे बताइए वो किस तरीके से सस्टेन करेंगे। तो हुकूमतों का काम होता है सब्सिडी देना, और हमारे जैसे मुल्क के अंदर
हाँ
सब्सिडी के बगैर गुजारा।
चलो ये एक दूसरा एक वर्जन आ गया था, तीसरी राय लेते हैं। मुजम्मिल असलम साहब हमारे साथ हैं। मुजम्मिल साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपकी नज़र में ये बजट कैसा था?
मेरी नज़र में ये बजट जो था ये टैक्स रिफॉर्म बजट था, और क्योंकि हमारे मुल्क में एडिशनल टैक्स लगाने की कोई गुंजाइश नहीं थी, जो पहले टैक्सेस जिन जगह पे लगे हुए थे, तो इस बजट में जो माजी में जो हमने मुराद दी हुई थी, जो कंसेशन दिए हुए थे, और जहाँ जहाँ कवरेज नहीं थी उसको जो है टैक्स लगाने की कोशिश की गई है। बॉटम लाइन ये है कि 1550 अरब रुपए जो है इस साल इजाफी टैक्स लगा रहे हैं, और वो जो टैक्स लगाया जा रहा है वो आवाम की जेब से जाएगा, और इस आमदनी का जो फालतू आमदनी का जो है इसका हुकूमत को कोई खातिर खा फायदा नहीं होगा, क्योंकि इस इतने बड़े टैक्स टारगेट के हदफ को रखने के बाद भी जो है 3,100 अरब रुपए का बजट खसारा रखा गया है, जो 7.1% है, और जो पाकिस्तान का मजबूरी कर रहा जो 31,000 अरब था, अगर हम 3,100 अरब रुपए का जो हमारा बजट खसारा इस साल का, तो अगले साल हम 10% जो हमारे मुल्क का पूरा हमने जो जब से हम बने हैं उसका सिर्फ 10% हम जो है कर्जा अगले साल में बढ़ा देंगे। तो इतना कुछ करने के बाद भी अगर हमारा खसारा इतना बड़ा है और बुलंदोबाला है, तो समझ लें कि फिर आने वाले दिनों में ये कर्जा उतारने के लिए मजीद टैक्सेस लगेंगे या आवाम पे बोझ आएगा। तो सूरत हाल कोई इतनी अच्छी नहीं हुई, और रहा सवाल रिलीफ का, वफाकी हुकूमत के पास इतनी बड़ी जगह नहीं थी, क्योंकि अब उन्होंने टैक्स का हदफ बहुत बड़ा रखा है, तो अब उनका जो प्रोविंशियल ट्रांसफर जो सूबों को रकम है वो 3,200 या 3,300 अरब रुपए मुंतकिल होगी, जो पिछले साल से 1,000 अरब ज्यादा है। अब सूबों पे मुनसर है कि वो अपने सूबों के लोगों को किस तरीके से रिलीफ देती है, चाहे हेल्थ है, चाहे एजुकेशन है, चाहे वो दूसरी चीजें हैं। वफाकी हुकूमत जो है जितना टैक्स बढ़ा रही है उतना ही टैक्स उसके सूद की मद में जो है आगे चले जाएगा, तो हम जो है एक तरीके से डेट ट्रैप में फंस चुके हैं।
बहुत शुक्रिया आपका मुजम्मिल असलम साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नादिया फारूक साहबा आप हमारे साथ मौजूद रहीं, आपके भी हम ममनून हैं, और आज़म खान साहब आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका भी शुक्रिया। सामिन आज का यह प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है, इसमें मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर हमने बात की, पाकिस्तान के अंदर हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियाँ और लंदन में भी एक बड़ी गिरफ्तारी हुई, उस पस मंज़र में हमने पाकिस्तान के अंदर सियासी अवामिल के ऊपर गुफ्तगू की, और आखिर में आज पेश होने वाले बजट पर असद हसन को इजाज़त दीजिए।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।
حسین کی گرفتاری کے بارے میں ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے لندن میں قانونی ماہر بیرسٹر امجد ملک اور پاکستان میں ممتاز سیاسی تجزیہ کار مظہر عباس سے گفتگو کی. ان کی رپورٹ.
لندن میں منگل کی صبح ایم کیو ایم کے بانی الطاف حسین کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے. ممتاز ماہر قانون بیرسٹر امجد ملک نے لندن سے بتایا کہ کہا تو یہ جا رہا ہے کہ یہ نفرت پر مبنی تقریر کا معاملہ ہے جو انہوں نے کی. ان کے الفاظ,
بتایا یہی جا رہا ہے کہ ان کو ایک پروسیجر کے تحت پولیس اسٹیشن لے جایا گیا ہے, اریسٹ وارنٹ کے ذریعے تلاشی لی گئی ہے, اب وہاں پہ پولیس ان کا انٹرویو کرے گی. تو یہ اب پتا آگے لگے گا کہ کس وجہ سے ان کا یہ انٹرویو یا ان کو یہ تفتیش کر رہے ہیں.
ان کا کہنا تھا کہ اب تک پولیس نے صرف اتنا کہا ہے کہ ایک 60 سالہ شخص کو اس کے گھر سے پولیس اینڈ کرمنل ایکٹ کے تحت پولیس اسٹیشن لے جایا گیا ہے. مزید تفصیلات اب تک نہیں بتائی گئی ہیں. پولیس عام طور سے گرفتاری پر ملزم کا نام نہیں بتاتی ہے. پاکستان کی جانب سے اس کوشش کے بارے میں الطاف حسین کو اس کے حوالے کر دیا جائے جب ان سے سوال کیا گیا کہ کیا دونوں ملکوں کے درمیان کوئی ایسا معاہدہ موجود ہے جس کے تحت انہیں پاکستان کے حوالے کیا جا سکے, تو انہوں نے کہا,
میڈیا میں بہت زیادہ خبریں سنتے ہیں کہ کوئی ایم او یو سائن ہو گیا ہے جو کہ ابھی تک پبلک نہیں کیا گیا. پاکستان اور برطانیہ کا بڑا ٹرکی ریلیشن شپ ہے. برطانوی عدالتیں پاکستان میں بندہ بھیجنے کے اوپر ابھی تک جو ہے وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے. ابھی تک انہوں نے کوئی ہائی پروفائل آدمی پاکستان کے حوالے نہیں کیا. ماضی میں 2-3 چیزیں تھیں جس کی وجہ سے آج تک بندہ پاکستان نہیں جا سکتا. ایک تو پاکستان میں سزائے موت ہے, دوسرا جو کنفیشنری اسٹیٹمنٹ لیتے وقت ٹارچر کا استعمال ہوتا ہے, تیسرا ہیومن رائٹ جو سچویشن ہے وہ اتنی حوصلہ افزا نہیں ہے. تو یہاں کی عدالتیں جو بہت سی میجسٹریٹ ایکسپیڈیشن کو دیکھتے ہیں, انہوں نے آج تک پاکستان کو یہ اس طرح کی ریکویسٹ, چاہے وہ برامدہ بگٹی ہو, الطاف حسین ہوں یا ہائی پروفائل پولیٹیکل اپوزیشن کے جو جماعت کے لیڈرز ہوں, وہ انہوں نے کوئی ان کو اتنا درغور نہیں سمجھا. اب بھی سچویشن ابھی تک تو یہی ہے کہ ایکسپیڈیشن پاکستان کا کوئی معاہدہ نہیں ہے, کنونشن سگنیٹری نہیں ہے دونوں, اور برطانیہ کیونکہ یورپین کنونشن آن ہیومن رائٹس کا سگنیٹری ہے تو وہ ایسے کسی بھی معاملے کے اوپر بہت غور سے دیکھے گا, اور اگر حکومت کو فیصلہ کرے گی تو وہ اس کو عدالت میں لے کے جائے گی, عدالت سے کہے گی کہ یہ دیکھے اور ثبوت پرائما فسائی دیکھے کہ کیا ان کے پاس کیس ہے, اور اگر کیس ہے شواہد ہے تو کیا اس شخص کو اگر ہم حوالے کرتے ہیں تو کیا اس کو ڈیو پروسیس آف فیئر ٹرائل ملے گا, کیا اس کے اوپر ٹارچر تو نہیں ہوگا کنفیشن لینے کے لیے, کیا اس کو ٹرائل کے دوران اور یا اس کے نتیجے میں سزائے موت تو نہیں ہوگی. اب وہ جو پاکستان گارنٹیاں دے گا, جو کہ آج کل کچھ اشخاص کے بارے میں وہ ایم او یو یا اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ پیدا کر رہے ہیں, تو وہ عدالتوں نے دیکھنا ہے کہ ان کا ٹریک ریکارڈ پچھلے 10 سال میں کیا ہے. کیا ٹریک ریکارڈ ایسا ہے کہ پاکستان میں کوئی ایسا شخص دے دیا جائے جو پولیٹیکل اینٹیٹی ہے کہ اس کے اوپر ٹارچر نہیں ہوگا یا اس کو سزائے موت نہیں دی جائے گی. ابھی تک تو حوصلہ افزا نہیں ہے. مجھے نہیں لگتا کہ الطاف حسین صاحب کا اگر ٹرائل ہو یا ان کے اوپر سزا ہو یا ان کی شہریت منسوخ ہو تو ان کو پاکستان کے حوالے کیا جائے گا. ابھی تک کوئی کنوینسنگ ایویڈنس نہیں ہے کہ ان کے اوپر فیئر ٹرائل یا ڈیو پروسیس میں جو ہے انٹرفیئرنس نہیں ہوگی یا انٹیمیڈیشن نہیں ہوگی.
ان کا کہنا تھا کہ 12-24 گھنٹے کے اندر صورتحال مزید واضح ہو سکے گی. ممتاز سیاسی تجزیہ کار مظہر عباس نے کہا کہ الطاف حسین کے خلاف ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس کے حوالے سے بھی تحقیقات ہو رہی ہے. ان کا کہنا تھا کہ یہ جو نفرت پر مبنی تقریر کا معاملہ ہے وہ ان کی گرفتاری کا سبب بنا ہے. ان کے الفاظ,
یہ جو ہیٹ اسپیچ تھی اور خاص طور سے 22 اگست والی جو 2016 کی جو تقریر جس کی بنیاد سے ان کی گرفتاری ہوئی ہے, اس کے اندر وہ انسائٹ وائلنس والا جو فیکٹر تھا وہ پریکٹیکلی ہو بھی گیا. یعنی 22 اگست 2016 کو جب انہوں نے تقریر کی اور پاکستان مخالف نعرے لگوائے, اس کے بعد لوگوں نے اٹھ کے ایک قریبی اے آر وائی کے چینل پر چلے گئے اور مبینہ طور پہ وہاں توڑ پھوڑ ہوئی, کافی وہ ہوا, تو وہ فوراً ان کی تقریر کے بعد وہ جو عمل ہے اور یہی ایویڈنس جو ہے یہ یہاں پاکستانی حکام نے ایف آئی لندن کے حوالے کیا تھا. یہ صرف یہ کہ وہ تقریر ہی نہیں ہوئی, اس تقریر کا رد عمل بھی فوری طور سے ہوا, اور اسی وجہ سے ویسے تو اور بہت سی تقاریر جو ہے لندن پولیس کے حوالے کی گئیں لیکن اس تقریر کو خاص طور سے بیس بنایا گیا ہے اور اسی جو مقدمہ قائم ہوا ہے وہ اسی تقریر کے حوالے سے ہوا ہے.
یہ تھے مظہر عباس, جن کا کہنا تھا کہ ممکن ہے کہ پاکستان نے منی لانڈرنگ کے حوالے سے بھی ان کے خلاف کوئی نئے شواہد حاصل کر کے لندن پولیس کے حوالے کیے ہوں. قمر عباس جعفری, اردو, VOA, واشنگٹن.